प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवन वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। सो आइए आज के कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सहायता मांगें और उनसे प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इन मधुर पवित्र क्षणों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमको प्रदान किए कि हम आपके पवित्र और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें, हमारी सहायता करें कि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी संकट क्लेश परेशानी में है, किसी चिंता में है, प्रभु आप उनकी रक्षा और सहायता करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्राई, अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की प्रथम पत्री के अंतिम अध्याय पर पहुंच रहे हैं। हम प्रेरित पौलुस के अंतिम उपदेश का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वो उपदेश है जो उन्होंने कुरिन्थस नगर की कलीसिया को दिया था, और इस अध्याय में हम यरूशलेम की मंडली के पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के विषय में तथा प्रेरित पौलुस की यात्रा के कार्यक्रम में परिवर्तन होने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनके विषय में अध्ययन करेंगे। सो इस प्रकार से 1-4 पदों में दान एकत्रित करने के विषय में अध्ययन करेंगे, 5-9 पदों में प्रेरित पौलुस की यात्रा के कार्यक्रम के विषय में तथा 10-24 पदों में कलीसिया के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। मित्रवर्ग, परंतु क्या आपको पिछले अध्याय का अध्ययन विषय याद है? यदि नहीं तो हम एक बार पुनः उसको दोहराते हैं। पिछला अध्ययन विषय था पुनरुत्थान, और इसके अंतर्गत हमने मसीह यीशु तथा अपने स्वयं के पुनरुत्थान के विषय में अध्ययन किया था। हमने 5 उप विषयों के अंतर्गत पुनरुत्थान का अध्ययन किया। सर्वप्रथम सुसमाचार में पुनरुत्थान की विशिष्टता अर्थात प्राधान्य। दूसरा विषय था पुनरुत्थान के प्रमाण या उसके सबूत। तीसरा विषय था पुनरुत्थान का जुलूस या क्रम। चौथा विषय था पुनरुत्थान का कार्यक्रम तथा नमूना, और 5वां विषय था पुनरुत्थान की सामर्थ्य। मित्रवर, यदि पुनरुत्थान के विषय में आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत विश्वास के लिए पूछें तो मैं इसके 2 मुख्य आधार बताऊंगा। पहला आधार, मृतक लाजर को 4 दिन के पश्चात मृतकों में से जीवित करना, इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही पुनरुत्थान और जीवन है। जो उन पर विश्वास रखता है वह सदा जीवित रहेगा। दूसरी बात, मसीह यीशु स्वयं 3रे दिन मृतकों में से जीवित हुए, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यह पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह मेरा भी पुनरुत्थान करने की सामर्थ्य रखता है, और ये प्रभु जब अपने लोगों को लेने के लिए आएगा तो उस समय वह मेरी देह का पुनरुत्थान करेगा और सदा अपने साथ अपने राज्य में सुरक्षित रखेगा और मुझे अनंत काल का जीवन प्रदान करेगा। मित्रवर, मेरा विश्वास बातों पर नहीं बल्कि वास्तविकता पर है। क्या आप इस पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर मनन किया है, उस पर विचार किया है, उसकी वास्तविकता को पहचाना है? यदि आप उसकी वास्तविकता को पहचानेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, वरन आप इस पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह पर हृदय से विश्वास करेंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। अब आइए मेरे साथ आज के बाइबल पाठ को सुनिए। यदि आपके पास बाइबल की प्रति है तो मेरे साथ ध्यानपूर्वक देखिए, अन्यथा सुनने का कष्ट कीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय 1-12 पदों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातिया की कलीसिया को दिया है उसे तुम भी मानो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें पत्र देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। अब यहां पर हम इन 4 पदों में दान के संबंध में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस अध्याय का प्रारंभ पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने से कर रहे हैं। यहां पवित्र लोगों का तात्पर्य क्या है जैसे यहां लिखा है, पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दिया है उसे तुम भी मानो। पवित्र लोगों से क्या तात्पर्य है? मित्रवर, पवित्र लोगों का तात्पर्य है विश्वासी जन। अब आप सोच रहे होंगे कि मसीही विश्वास के महिमा में धर्म सिद्धांत अर्थात पुनरुत्थान के विषय में चर्चा करने के पश्चात प्रेरित पौलुस कहेंगे कि भाइयों, हम स्वर्ग के लोग हैं, इसलिए आओ हम बादलों पर रहने की तैयारी करें। किंतु यहां पर विषय पूर्णता भिन्न है। ऐसा कहने की अपेक्षा प्रेरित पौलुस हमसे दान एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। वो हमें पृथ्वी पर ही रहना सिखा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई तेज प्रकाश दिखाकर तुरंत बुझा दे। प्रेरित पौलुस ने हमें पुनरुत्थान का महिमान्वित चित्र दर्शाया और उसके पश्चात उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए छोड़ दिया कि हम इस पृथ्वी पर रहना सीखें और एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की सेवा करें। श्रोता, प्रेरित पौलुस पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने से अपने विषय को आरंभ कर रहे हैं। पवित्र लोगों का तात्पर्य है एक विश्वासी जन से। जब एक विश्वासी जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, परमेश्वर स्वयं उसको पवित्र ठहराते हैं, वो उसको धर्मी ठहराते हैं। और इस प्रकार से जो व्यक्ति आपकी दृष्टि में घृणित है, पापी है, एक पतित व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र जन है। क्योंकि हम अपवित्र होते हैं परमेश्वर के नियमों को, उनके कार्यों को तोड़कर, उनके कार्यों से लापरवाही करके, परमेश्वर के विरोध में पाप करके। और इसलिए जब हम उन पापों से क्षमा पाते हैं और परमेश्वर के कार्य कर्म पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर स्वयं ही हमें पवित्र और धर्मी ठहराते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातिया की कलीसिया को दिया है उसे मैं तुम्हें भी दे रहा हूं, तुम भी इसको मानो। किंतु कुछ पवित्र लोगों का कहना है कि आपको दान के विषय में चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भौतिक संसार का विषय है। आपको केवल आत्मिक बातों की चर्चा करना चाहिए। परंतु मेरे मित्र, प्रेरित पौलुस मसीही दान देने के ढंग के विषय में भी बता रहे हैं। वो ना केवल दान की चर्चा कर रहे हैं वरन वो ये भी बता रहे हैं कि हमें दान किस प्रकार से देना चाहिए। दूसरे पद में वो कहते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय में से कुछ रख छोड़े। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों की पवित्र बाइबल में शायद ऐसा लिखा है कि सब्त के दिन दशमांश रख छोड़ना। मेरे प्रिय भाई, पवित्र बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वही कीजिए जो प्रभु कहता है। प्रभु कहता है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े। मेरे मित्र, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। स्मरण रहे, हम दान देकर मोल लिए गए हैं। मनुष्य के दास ना बने, मनुष्य की शिक्षा पर ना चलें। हम प्रभु की शिक्षा, उसके नियमों का पालन करें। प्रभु कहता है सप्ताह के प्रथम दिन। प्रभु ने कलीसिया को सप्ताह का प्रथम दिन दिया है। यही वो दिन है जब आरंभिक कलीसिया एक साथ संगति करती थी और मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान को स्मरण करती थी। अधिकांश स्थानीय कलीसिया इसी परंपरा का पालन कर रही हैं। किंतु कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमें दान किस प्रकार देना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम दान कैसे दें। तो आइए हम देखें कि प्रेरित पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जैसा परमेश्वर ने तुम्हें दिया है अर्थात अपनी स्मृति के अनुसार प्रभु को दो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को दो। और यहां दशमांश का वर्णन नहीं है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं दूसरे पद में, तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार यानी अपनी समृद्धि के अनुसार प्रभु को दो। अब यहां दशमांश की कोई चर्चा नहीं है। कुछ लोग अपनी आय का 50% भी प्रभु को देते हैं। वैसे आपका दान प्रभु से आपके संबंधों पर निर्भर करता है। जिसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं वो प्रभु से अधिक प्रेम करता है। आपका दान ये स्पष्ट करता है कि आपका प्रेम प्रभु से कैसा है, कितना घनिष्ठ है। प्रेरित पौलुस ये भी बताते हैं कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना किया जाए, जैसा कि वो यहां कहते हैं कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना रख करना पड़े। तुम मेरे आने से पूर्व दान इकट्ठा करके रखना और ये कार्य सप्ताह के पहले दिन किया जाए। दान पहले से एकत्रित करके रखा जाए। ऐसा करना प्रभु और उसकी सेवकाई के प्रति आपके प्रतिदिन के संबंधों तथा चिंता को प्रकट करता है। ये प्रकट करता है कि आपके संबंध प्रभु से क्या हैं और आप प्रभु के सुसमाचार और उसकी सेवकाई के प्रति कितने उत्साहित हैं, आपको उसकी कैसी चिंता है, आप प्रभु की सेवा से कितना प्रेम करते हैं। यहां प्रेरित पौलुस आपको प्रभु की सेवा के लिए दान एकत्रित करने के विषय में भी बताते हैं। और तब अग्रिम पदों में हम देखते हैं यहां लिखा है प्रेरित पौलुस अपने कार्यक्रम के विषय में बता रहे हैं। वो यहां बताते हैं कि वो कुरिन्थुस नगर जाने का कार्यक्रम बना रहे थे, परंतु ये तभी संभव हो सकेगा यदि प्रभु ने चाहा। देखिए, परंतु मैं मैसिडोनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मैं मैसिडोनिया होकर जा रहा हूं और संभव है कि मैं तुम्हारे साथ ठहरूं या शीत ऋतु भी तुम्हारे साथ व्यतीत करूं, जिससे कि जहां मुझे जाना हो वहां के लिए तुम मुझे विदा कर सको। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं केवल मार्ग में जाते समय तुमसे मिलता जाऊं, वरन मुझे आशा है कि यदि प्रभु ने चाहा तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा भी। परंतु मैं पिंतेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा क्योंकि मेरे लिए वहां प्रभावशाली सेवा करने का एक बड़ा द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। अब इन पदों में प्रेरित पौलुस अपने कार्यक्रम के विषय में बता रहे हैं और वो कहते हैं कि कुरिन्थुस नगर जाने का कार्यक्रम मैंने बनाया है, परंतु ये तभी संभव हो सकेगा यदि प्रभु ने चाहा तो। मित्रवर, एक विश्वासी जन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि वह परमेश्वर की इच्छा का आदर करे और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने उसके आगे समर्पित करे, अपनी मनमानी ना करे। अपने कार्यक्रम को परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर से ये ना कहे कि हे प्रभु तू इस कार्यक्रम को पूरा कर, वरन वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कार्यक्रम में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहे। ऐसा है सेवक ही परमेश्वर का वास्तविक और सच्चा सेवक है, क्योंकि प्रेरित पौलुस में हम परमेश्वर के एक सच्चे सेवक के रूप को देखते हैं। प्रेरित पौलुस अपनी यात्रा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करना चाहते हैं। मित्र, हम जानते हैं कि कुरिन्थुस नगर यौन अपराधों में तथा प्रतिमा पूजा में इतना आगे बढ़ा हुआ था कि वर्तमान पीढ़ी उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसी दशा में प्रेरित पौलुस कुछ विशेष व्यक्तियों के विश्वास व मसीही चरित्र की प्रशंसा करते हैं। वो यहां प्रभु के युवा सेवक तिमोथियस तथा अपोल्लुस का विशेष उल्लेख करते हैं। सो आइए देखें 10वें पद को मेरे साथ देखिए। यदि तिमोथियस आ जाए तो ध्यान रखना कि वह तुम्हारे साथ निर्भय होकर रहे, क्योंकि वो भी मेरे समान प्रभु का कार्य कर रहा है। इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से विदा करना कि वह मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जहां तक हमारे भाई अपुल्लोस का प्रश्न है। मैंने उसे बहुत प्रोत्साहन दिया है कि वह भाइयों के साथ तुम्हारे पास आए, परंतु इस समय उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि आए, फिर भी अवसर मिलते ही वह आएगा। मित्रवर, यहां पर वो तिमोथियस के विषय में बता रहे हैं कि यदि तिमोथियस आ जाए तो उसका ध्यान रखना, वो तुम्हारे साथ निर्भय होकर रहे, अर्थात उसके साथ प्रेम का आदर का व्यवहार करना, उसे तुच्छ ना जानना। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जहां तक हमारे भाई अपोल्लोस का संबंध है, मैंने उसे बहुत प्रोत्साहित किया है, और जब वो भाइयों के साथ तुम्हारे पास आता है तो इस समय उसकी बिल्कुल इच्छा तो नहीं थी कि वो आए, फिर भी अवसर मिलते ही वो तुम्हारे पास अवश्य आएगा। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यदि मैं नहीं आ सकता हूं तो तिमोथियस आएगा और भाई अपोल्लोस भी तुम्हारे पास आ सकते हैं, जो तुम्हें आत्मिक रूप से प्रोत्साहित करेंगे। तब 13वें पद में प्रेरित पौलुस एक विशेष बात बताते हैं और वो कहते हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और शक्तिशाली बनो। 13वें पद में वो विश्वासियों की मंडली को प्रोत्साहित करते हैं और वो यहां पर चार बातों के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए इन चार बातों पर ध्यान दें, ये कौन कौन सी चार बातें हैं। पहली बात, वो कहते हैं जागते रहो। प्रेरित पौलुस ने अनेक बार अपनी पत्रियों में इस शब्द का प्रयोग किया है, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कलीसिया को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मसीही विश्वासी जन को जागते रहना अत्यंत आवश्यक है, परंतु हम कलीसिया के मध्य ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो गहरी निंद्रा में हैं, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, किंतु इस समय प्रभु का वचन आपसे कहता है कि जागते रहो। दूसरी बात, विश्वास में स्थिर रहो। मेरे मित्र, ये वो विश्वास है जो हमारे उद्धार का विश्वास है। इस विश्वास में अनंत जीवन है, इस विश्वास में हमारा उद्धार है, और इस विश्वास में हमारे पास परमेश्वर की अनंत संगति की आशा है। ये विश्वास महत्वपूर्ण है। इस विश्वास में स्थिर रहना प्रत्येक विश्वासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप विश्वास में दुर्बल हैं तो किसी भी क्षण आप पाप में, बुराई में गिर सकते हैं। फिर तीसरी बात है, पुरुषार्थ करो। परमेश्वर के लिए मर्दानगी का कार्य करो, परिश्रम करो, सामर्थ्य के कार्य करो। और चौथी बात वो कहते हैं, शक्तिशाली बनो। प्रभु चाहता है कि उसके लोग शक्तिशाली हों, दुर्बल ना हो, मरे गिरे ना हो, बल्कि आत्मिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली हों। प्रिय मित्र, यदि हम इन चार बातों पर ध्यान रखते हैं तो हम एक शक्तिशाली विश्वासी बनते हैं। परंतु 14वें पद में जब हम जाते हैं तो प्रेरित पौलुस एक विशेष बात कहते हैं, वो कहते हैं, जो कुछ करो प्रेम से करो। अब इससे स्पष्ट है कि एक बार पुनः वह सब बातों के ऊपर प्रेम को रखते हैं। प्रेम सारी बातों पर प्रभुता करे, जो कुछ करो प्रेम से करो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का स्वरूप है, प्रेम परमेश्वर है। तब आगे 15वें पद में हम पढ़ते हैं, भाइयों, तुम स्तफनुस के कुटुंबियों को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया से कहते हैं कि तुम स्तफनास के कुटुंबियों को आदर और सम्मान देना, क्योंकि वे अखाया के प्रथम विश्वासी हैं। वो सर्वप्रथम प्रभु पर विश्वास लाए, और वो फिर आगे कहते हैं, मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम ऐसे लोगों के अधीन रहो और ऐसे प्रत्येक के भी जो इस काम में सहायक और परिश्रमी हैं। मैं स्तफनास और फुर्तुनातुस और अखाइकुस के आने से प्रसन्न हूं, क्योंकि जो तुम ना कर सके उसे उन्होंने पूर्ण किया। उन्होंने तुम्हारी तथा मेरी आत्मा को सुख दिया है, अतः ऐसे मनुष्यों का आदर करो। इन पदों में प्रेरित पौलुस आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो पवित्र लोगों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते हैं, जो प्रभु के कार्य अर्थात सुसमाचार प्रचार कार्य में सहायक हैं, उनके अधीन रहो तथा उनका आदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे स्थान पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मित्रवर, प्रभु के सेवकों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, स्मरण रखिए, वे आपकी ओर से आपके स्थान पर सेवा कर रहे हैं। तब 19 और 20 पदों में हम पढ़ते हैं, एशिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार, अक्विला और प्रिस्का तथा उनके घर की कलीसिया का तुमको प्रभु में हार्दिक नमस्कार। सब भाइयों का तुम्हें नमस्कार, पवित्र चुंबन सहित एक दूसरे का अभिवादन करो। हम देखते हैं कि एशिया में भी अनेक लोग मसीह यीशु पर विश्वास ले आए थे। अब यहां घर की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं। मित्रवर, यही समय दोबारा फिर आ रहा है, क्योंकि लोग आराधनालयों के नीरस वातावरण से अब ऊब चुके हैं। अब इसमें पद में चुंबन की अनुमति दी गई है। कुछ लोग इस पद से बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी बांछें खिल जाती हैं, परंतु ध्यान रहे, ये चुंबन पवित्र होना चाहिए। अधिकांश चुंबन पवित्र नहीं होते। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा नमस्कार, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हे प्रभुआ, प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर हो। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे, आमेन। मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पत्रस से 3 बार एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आज ये प्रश्न प्रभु आपसे भी करते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैंने अपने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हें पाप के दंड से बचाने के लिए क्रूस की घृणित मृत्यु को स्वीकार किया, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? मेरे मित्र, मैं इसी प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रभु का सेवक हूं। आपका क्या उत्तर है? आपका उत्तर मसीह यीशु के प्रति आपके प्रेम तथा आपकी कृतज्ञता अर्थात शुक्रगुजारी को प्रकट करता है। यदि आप मसीह से प्रेम करेंगे तो आप उसके सेवकों व पवित्र लोगों से भी प्रेम करेंगे। प्रेम के इसी महान संदेश के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब यहां हमारा कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की प्रथम पत्री का अध्ययन समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के अध्ययन को लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। एक विशेष सूचना, प्रिय श्रोता, सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम इस समय जो आप शॉर्टवेव 41 मीटर बैंड पर सुन रहे हैं, 25 मार्च सन 2001 से ये कार्यक्रम शॉर्टवेव 31 मीटर बैंड पर सुन सकेंगे। कृपया इस परिवर्तन से अपने मित्रों को अवगत कराएं।